अध्ययन लेख 12। इस लेख का अध्ययन 18 से 24 मई के दौरान किया जाएगा। हमें कब बोलना चाहिए और कब नहीं, ये लेख सबोपदेशक 3:1-7 पर आधारित है, जहां लिखा है, हर चीज का एक समय होता है, चुप रहने का समय और बोलने का समय। गीत 124, हमेशा वफादार। लेख की एक झलक। हमें कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए, इस बारे में बाइबल में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। जब हम इन सिद्धांतों को मानेंगे तो यहोवा हमसे खुश होगा। पैराग्राफ 1, सवाल। सबोपदेशक 3:1-7 से हम क्या सीखते हैं? हम में से कुछ लोगों को बात करना बहुत अच्छा लगता है, वहीं कुछ लोग चुप रहना पसंद करते हैं। जैसे इस लेख की आयत कहती है, बोलने और चुप रहने का एक समय होता है। सबोपदेशक 3:1-7 में लिखा है, हर चीज का एक समय होता है, आसमान के नीचे हर एक काम का एक समय होता है, फाड़ने का समय और सिलने का समय, चुप रहने का समय और बोलने का समय। जो भाई बहन बहुत शांत रहते हैं, उनके बारे में हम शायद सोचें कि अगर वे थोड़ा बात करें तो अच्छा रहेगा, और जो ज्यादा बात करते हैं उनके बारे में हम शायद सोचें कि वे थोड़ा कम बोलें तो अच्छा रहेगा। पैराग्राफ 2, सवाल। कौन हमें बता सकता है कि हमें कब बात करनी चाहिए और कैसी बातें करनी चाहिए? बात करने की काबिलियत यहोवा से मिला एक वरदान है। यहोवा ने हमें बाइबल में बताया है कि हमें उस वरदान या तोहफे का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। इस लेख में हम बाइबल में बताए कुछ लोगों के उदाहरण पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हमें कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। हम ये भी देखेंगे कि हम दूसरों से जो कहते हैं वो सुनकर यहोवा को कैसा लगता है। सबसे पहले आइए जानें कि हमें कब बोलना चाहिए। कब बोलना चाहिए? पैराग्राफ 3, सवाल। रोमियो 10:14 के मुताबिक हमें कब बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए? जब भी हमें यहोवा और उसके राज के बारे में किसी को बताने का मौका मिलता है तो हमें बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। रोमियो 10:14 में लिखा है, मगर वे उसका नाम कैसे पुकारेंगे जब उन्होंने उस पर विश्वास ही नहीं किया, और वे उस पर कैसे विश्वास करेंगे जिसके बारे में उन्होंने सुना ही नहीं, और वे उसके बारे में कैसे सुनेंगे जब कोई प्रचार करने वाला ही न हो। ऐसा करने से हम यीशु के आदर्श पर चल रहे होंगे। उसने दूसरों को अपने पिता के बारे में सच्चाई बताई, क्योंकि धरती पर उसके आने की एक खास वजह यही थी। लेकिन किसी को गवाही देते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हम उससे सही तरीके से बात करें। हमें कोमल स्वभाव और गहरे आदर के साथ बात करनी चाहिए। हमें उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए और उसकी धारणाओं का खंडन नहीं करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने से हम उसे सच्चाई के बारे में कुछ सिखा पाएंगे और हमारी बातें उसके दिल पर असर करेंगी। पैराग्राफ 4, सवाल। जैसे नीति वचन 9:9 में बताया गया है, प्राचीनों को क्यों बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए? जब प्राचीन देखते हैं कि किसी मामले में एक भाई या बहन की सोच सही नहीं है तो उन्हें सलाह देने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, यह जरूरी है कि उन्हें सलाह देने के लिए देखना होगा कि कौन सा वक्त सही रहेगा, ताकि वो भाई या बहन शर्मिंदा न हो जाए। उन्हें यह भी ध्यान रखना है कि सलाह देते समय आसपास दूसरे लोग न हों। प्राचीनों को उसकी गरिमा बनाए रखनी है, मगर साफ साफ बाइबल के सिद्धांत भी बताने हैं ताकि वो अपनी सोच सुधार सके। नीतिवचन 9:9 में लिखा है, बुद्धिमान को समझा वो और बुद्धिमान बनेगा, नेक इंसान को सिखा वो सीखकर अपना ज्ञान बढ़ाएगा। ये क्यों जरूरी है कि जब किसी को उसकी गलती बतानी हो तो हम हिम्मत से बोलें और पीछे न हटें? इसे समझने के लिए आइए दो लोगों के उदाहरण पर ध्यान दें। एक ने हिम्मत से बात की जबकि दूसरा ऐसा करने से पीछे हट गया। पहला उदाहरण एक आदमी का है जिसे अपने बेटों की गलती सुधारने की जरूरत थी। दूसरा उदाहरण एक औरत का है, उसे एक आदमी को बताना था कि वो जो करने जा रहा है वो गलत है। वो आदमी आगे चलकर एक राजा बनने वाला था। पैराग्राफ 5, सवाल। महायाजक एली को कब बोलना चाहिए था? महायाजक एली के दो बेटे थे जिनसे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके बेटे यहोवा का आदर नहीं करते थे। वे दोनों याजक थे और उन्हें पवित्र डेरे में काफी अधिकार सौंपा गया था, लेकिन वे दोनों अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करते थे। वे यहोवा को चढ़ाए जाने वाले बलिदानों का घोर अपमान करते थे और पवित्र डेरे में सेवा करने वाली औरतों के साथ बेधड़क होकर नाजायज संबंध रखते थे। मूसा के कानून के मुताबिक उन दोनों को मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन एली ने उन्हें बस थोड़ी बहुत डांट लगाकर छोड़ दिया और पवित्र डेरे में सेवा करने दिया। जब यहोवा ने देखा कि उसने अपने बेटों को ढीला छोड़ दिया है, तो उसे कैसा लगा? उसने एली से कहा, तू क्यों हमेशा मुझसे ज्यादा अपने बेटों का आदर करता है? यहोवा ने एली के दुष्ट बेटों को मौत की सजा देने का फैसला किया। पैराग्राफ 6। सवाल, एली की गलती से हमें क्या सबक मिलता है? एली की गलती से हमें एक अच्छा सबक मिलता है। जब हमें पता चलता है कि हमारे एक दोस्त या परिवार के सदस्य ने परमेश्वर का कोई नियम तोड़ा है, तो उसे उसकी गलती बतानी चाहिए। हमें उसे समझाना चाहिए कि उसने परमेश्वर के किन सिद्धांतों के खिलाफ काम किया है। हमें उसे यह भी बताना चाहिए कि वो उन भाइयों को अपनी गलती बताए जिन्हें यहोवा ने ठहराया है, ताकि वे सुधार करने में उसकी मदद करें। हमें एली की तरह बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यहोवा से ज्यादा अपने दोस्त या परिवार के लोगों का आदर नहीं करना चाहिए। किसी को उसकी गलती बताने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, मगर ऐसा करने से अच्छे नतीजे मिलते हैं। इस बात को समझने के लिए आइए देखें कि अबिगेल ने क्या किया था। पैराग्राफ 7। सवाल, अबिगेल ने क्यों दाविद से बात करने का फैसला किया? अबिगेल नाबाल नाम के एक बड़े जमींदार की पत्नी थी। जब दाविद और उसके आदमी राजा शाऊल से बचकर भाग रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने नाबाल के चरवाहों की बहुत मदद की थी और नाबाल की भेड़ बकरियों को लुटेरों से बचाया था। मगर क्या नाबाल दाविद और उसके आदमियों का जरा भी एहसानमंद था? नहीं। जब दाविद ने नाबाल से कहा कि वो उसके आदमियों को थोड़ी खाने पीने की चीजें दे, तो नाबाल गुस्सा हो गया और उसने दाविद और उसके आदमियों के बारे में उल्टी सीधी बातें कहीं। इसलिए दाविद ने फैसला किया कि वो नाबाल के घराने के हर आदमी को मार डालेगा। अबिगेल समझ गई कि इस मुसीबत को टालने के लिए दाविद से बात करना जरूरी है, ये बोलने का समय है। उसने हिम्मत जुटाई और उससे बात करने निकल पड़ी। वो दाविद और उसके 400 हथियारबंद आदमियों से मिलने गई, जो भूखे थे और गुस्से से उबल रहे थे। पैराग्राफ 8। सवाल, अबिगेल से हम कौन सी अच्छी बात सीखते हैं? जब अबिगेल दाविद से मिली, तो वो बड़ी हिम्मत और आदर के साथ बोली। उसने दाविद को अपनी बात पर यकीन दिलाने की कोशिश की। जो मुसीबत खड़ी हुई थी, उसमें अबिगेल का कोई कसूर नहीं था। फिर भी उसने दाविद से माफी मांगी। अबिगेल को यहोवा पर भरोसा था कि वो उसकी मदद करेगा। उसने दाविद से कहा कि वो एक भला इंसान है, इसलिए उसे पूरा यकीन है कि वो जरूर सही काम करेगा। जब हम भी देखते हैं कि कोई गलत राह पर निकल पड़ा है, तो हमें अबिगेल की तरह हिम्मत जुटाकर उसे रोकना चाहिए। हमें उससे इज्जत के साथ बात करनी चाहिए, मगर बोलने से डरना नहीं चाहिए। जब हम किसी को प्यार से समझाते हैं, तो हम उसके सच्चे दोस्त साबित होते हैं। पैराग्राफ 7 और 8 से संबंधित तस्वीर के बारे में, अबिगेल ने सही समय पर दाविद से बात की, इसलिए अच्छा नतीजा निकला। चित्र शीर्षक, अबिगेल से हम सीखते हैं कि जब बोलने का समय होता है, तो हमें बोलना चाहिए। तस्वीर के बारे में, एक बहन दूसरी बहन को अच्छी सलाह दे रही है। पैराग्राफ 9 और 10। सवाल, किसी की गलती सुधारते समय प्राचीनों को क्या याद रखना चाहिए? खासकर प्राचीनों में बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। जब एक भाई या बहन कुछ गलती करता है, तो उससे बात करने से उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। प्राचीन जानते हैं कि वे खुद भी गलतियां करते हैं और उन्हें भी एक दिन सलाह की जरूरत पड़ेगी, मगर इस वजह से उन्हें दूसरों की गलत सोच सुधारने से झिझकना नहीं चाहिए। जब वे किसी को सलाह देते हैं, तो उन्हें कुशलता से बात करनी चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। किसी भाई या बहन की सोच सुधारने की एक वजह यह है कि वे उससे प्यार करते हैं, मगर सबसे बड़ी वजह यह है कि वे यहोवा का आदर करते हैं, उसके सिद्धांतों को मानने का बढ़ावा देते हैं और मंडली को खतरे से बचाना चाहते हैं। पैराग्राफ 9 से संबंधित तस्वीर के बारे में। एक भाई दूसरे भाई को साफ सफाई के बारे में कुछ सुझाव दे रहा है। अब तक हमने देखा कि हमें कब बोलना चाहिए, अब आइए देखें कि हमें कब चुप रहना चाहिए और चुप रहना क्यों मुश्किल लग सकता है। कब चुप रहना चाहिए? पैराग्राफ 11। सवाल, याकूब ने क्या मिसाल दी? ये क्यों एक बढ़िया मिसाल है? अपनी जबान को काबू में रखना कभी कभी हमें मुश्किल लग सकता है। इस बात को समझाने के लिए बाइबल के एक लेखक याकूब ने एक बढ़िया मिसाल दी। उसने कहा, अगर कोई इंसान बोलने में गलती नहीं करता तो वह परिपूर्ण है और अपने पूरे शरीर को भी काबू में रख सकता है। हम घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं ताकि वह हमारी बात माने, और इससे हम उसके पूरे शरीर को भी काबू में कर पाते हैं। याकूब 3:2-3। लगाम का एक हिस्सा घोड़े के सिर पर डाला जाता है और दूसरा हिस्सा, जिसे बिट कहते हैं, उसके मुंह में डाला जाता है ताकि घोड़ा काबू में रहे। अगर एक घुड़सवार घोड़े को बेलगाम छोड़ दे तो वो जहां मर्जी भागने लगेगा। वो खुद भी चोट खाएगा और घुड़सवार को भी जख्मी कर देगा। उसी तरह अगर हम भी अपनी जबान पर लगाम न लगाएं तो हमारी वजह से आफत खड़ी हो सकती है। तो आइए देखें कि हमें कब कब अपनी जबान पर लगाम लगाना होगा। पैराग्राफ 12। सवाल, हमें कब अपनी जबान पर लगाम लगाना होगा? अगर किसी भाई या बहन के पास ऐसी जानकारी है जो उसे दूसरों को नहीं बतानी चाहिए तो आप क्या करते हैं? उदाहरण के लिए, कुछ देशों में हमारे काम पर रोक लगाई गई है। वहां के भाई बहनों से उम्मीद की जाती है कि वे दूसरे देशों के भाई बहनों को न बताएं कि उनके यहां प्रचार काम वगैरह कैसा चल रहा है। अगर ऐसे देश के किसी भाई या बहन से आपकी मुलाकात होती है तो क्या आपका मन करता है कि उससे पूछें कि वहां हमारा काम कैसा चल रहा है? शायद आपका इरादा गलत ना हो। हम सब अपने भाई बहनों से प्यार करते हैं और उनका हाल चाल जानना चाहते हैं। उन्हें ठीक किस बात में मदद की जरूरत है ये जानकर हम उसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि ऐसे भाई या बहन से मिलते समय हमें अपनी जबान पर लगाम लगाना होगा। वो क्यों? अगर हम उस पर दबाव डालें कि वहां के काम के बारे में बताए तो हम उसका भला नहीं कर रहे होंगे। हम उसके देश के भाई बहनों को खतरे में डाल रहे होंगे। उसके देश के भाई बहन उससे यही उम्मीद करते होंगे कि वो जहां कहीं जाएगा उस जानकारी को गुप्त रखेगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से उन भाई बहनों की मुश्किलें बढ़ जाएं। और उन देशों के भाई बहनों को भी ध्यान रखना है कि वे किसी को न बताएं कि उनके यहां प्रचार काम किस तरीके से होता है या सभाएं कैसे चलाई जाती हैं। पैराग्राफ 12 से संबंधित तस्वीर के बारे में। एक भाई और उसकी पत्नी ऐसे देश में होने वाली सेवा के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं जहां रोक लगी है। पैराग्राफ 13। सवाल क, नीतिवचन 11:13 के मुताबिक प्राचीनों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सवाल ख, और क्यों? खासकर प्राचीनों को ध्यान देना है कि वे नीतिवचन 11:13 में बताए गए सिद्धांत को माने और गुप्त जानकारी को गुप्त ही रखें। वहां लिखा है, दूसरों को बदनाम करने वाला उनका राज बताता फिरता है, लेकिन भरोसेमंद इंसान राज को राज ही रखता है। ये एक प्राचीन के लिए मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर वो शादीशुदा हो। ये सच है कि जब पति पत्नी एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते हैं और अपने मन का बोझ हल्का करते हैं तो उनका रिश्ता गहरा होता है। लेकिन एक प्राचीन को कभी भी मंडली के भाई बहनों की राज की बातें अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो भाई बहनों का भरोसा उस पर से उठ जाएगा। प्राचीनों पर भरोसा करके उन्हें मंडली में जिम्मेदारी दी जाती है, इसलिए वे दोगली बातें या धोखा देने वाली बातें नहीं बोल सकते। पहला तिमुथियुस 3:8। फुटनोट, इसका मतलब यह है कि वे अपने भाई बहनों का राज खोलकर उन्हें धोखा नहीं दे सकते। अगर एक प्राचीन वाकई अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वो उसे ऐसी बातें नहीं बताएगा जो उसे जानने की जरूरत नहीं है, ताकि वो बेवजह परेशान ना हो। पैराग्राफ 13 से संबंधित तस्वीर के बारे में। एक प्राचीन ने इस बात का ध्यान रखा है कि मंडली की गुप्त बातें किसी को सुनाई न दे। पैराग्राफ 14। सवाल, एक प्राचीन का अच्छा नाम बना रहे इसके लिए उसकी पत्नी क्या कर सकती है? एक प्राचीन की पत्नी को भी ध्यान रखना है कि वो कभी भी अपने पति से ऐसी बातें उगलवाने की कोशिश न करे जिन्हें गुप्त रखना जरूरी है। तब मंडली में उसके पति का अच्छा नाम बना रहेगा। जो पत्नी इस सलाह को मानती है वो अपने पति का साथ देती है। वो उन लोगों की भी इज्जत करती है जिन्होंने उसके पति को अपना राज बताया है। सबसे खास बात, वो यहोवा को खुश करती है क्योंकि उसके अच्छे व्यवहार से मंडली की शांति और एकता बनी रहती है। हमारी बातें सुनकर यहोवा को कैसा लगता है? पैराग्राफ 15। सवाल, अय्यूब के तीन साथियों की बातें सुनकर यहोवा को कैसा लगा और क्यों? हम बाइबल की किताब अय्यूब से इस बारे में काफी कुछ सीख सकते हैं कि हमें कब बोलना चाहिए और कैसी बातें करनी चाहिए। जब अय्यूब पर बड़ी बड़ी मुश्किलें आईं और वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, तब चार आदमी उसे दिलासा देने और कुछ समझाने के लिए आए। पहले तो वे काफी देर तक चुप बैठे रहे, मगर इसके बाद उनमें से तीन आदमी बोलने लगे। वे थे एलीपज, बिल्दद और सोपर। उनकी बातों से पता चलता है कि जब वे चुप बैठे थे तो वे ये नहीं सोच रहे थे कि अय्यूब की हिम्मत बंधाने के लिए क्या कहना अच्छा रहेगा। इसके बजाय वे सोच रहे थे कि वे कैसे साबित करेंगे कि अय्यूब ने कोई पाप किया होगा। उनकी कुछ बातें सच थी, मगर उन्होंने अय्यूब को चुभने वाली बातें कहीं और उसे एक बुरा इंसान बताया। उन्होंने यहोवा के बारे में भी गलत बातें कहीं। उन तीनों आदमियों की बातें सुनकर यहोवा को कैसा लगा? उसका गुस्सा उन पर भड़क उठा। उसने कहा कि उन तीनों ने मूर्खता की बातें की हैं। फिर उसने उन तीनों आदमियों से कहा कि वे अय्यूब से गुजारिश करें कि वो उनकी तरफ से यहोवा से माफी मांगे। पैराग्राफ 16। सवाल, एलीपज, बिल्दद और सोपर की बुरी मिसाल से हम क्या सीखते हैं? एलीपज, बिल्दद और सोपर की बुरी मिसाल से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात, हमें अपने भाई बहनों पर दोष नहीं लगाना चाहिए। हमें उनसे कुछ कहने से पहले उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि उन पर क्या बीत रही है। दूसरी बात, जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो कह रहे हैं वो सच हो और हमारे भाई बहनों को चोट न लगे। तीसरी बात, यहोवा गौर से सुनता है कि हम एक दूसरे से कैसी बातें कहते हैं। पैराग्राफ 17। सवाल, एलीहू से हम क्या सीखते हैं? अय्यूब से मिलने जो आदमी आए थे उनमें से चौथा आदमी एलीहू था। वो अब्राहम का एक रिश्तेदार था। जब अय्यूब और बाकी तीन आदमी बात कर रहे थे तो वो उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था, इसलिए वो अय्यूब को अच्छी सलाह दे पाया। उसने अय्यूब से प्यार से बात की, पर साथ ही उसे साफ साफ बताया कि उसकी सोच क्यों गलत है, इसलिए अय्यूब अपनी सोच सुधार पाया। एलीहू अपनी बातों से यहोवा की बड़ाई करना चाहता था, न कि अपनी या किसी इंसान की। एलीहू से हम सीखते हैं कि चुप रहने और बोलने का एक समय होता है। हम ये भी सीखते हैं कि जब हम किसी को सुधार करने के लिए सलाह देते हैं तो हमारी बातों से यहोवा की बड़ाई होनी चाहिए, न कि हमारी। पैराग्राफ 18। सवाल, अगर हम यहोवा के दिए वरदान की कदर करते हैं तो हम क्या करेंगे? हमें कब बात करनी चाहिए और कैसी बातें करनी चाहिए, इस बारे में बाइबल में कितनी बढ़िया सलाह दी गई है। अगर हम यहोवा के एहसानमंद हैं कि उसने हमें बोलने का वरदान दिया है तो हम बाइबल की सलाह मानेंगे। बुद्धिमान राजा सुलेमान ने ईश्वर प्रेरणा से लिखा, जैसे चांदी की नक्काशीदार टोकरी में सोने के सेब, वैसे ही सही वक्त पर कही गई बात होती है। नीतिवचन 25:11। जब कोई बात कर रहा होता है तब अगर हम ध्यान से सुने और बोलने से पहले सोचें तो हमारे बोल सोने के सेब जैसे होंगे जो सुंदर होने के साथ साथ बहुत अनमोल होते हैं। फिर चाहे हम ज्यादा बोलें या कम, हमारी बातों से दूसरों का हौसला बढ़ेगा और यहोवा खुश होगा। यहोवा के दिए वरदान की कदर करने का यह कितना बढ़िया तरीका है। कुछ और जानकारी। बोलने का समय। दूसरों को यहोवा के बारे में बताते समय हमें कोमल स्वभाव और गहरे आदर के साथ बात करनी चाहिए और उनकी धारणाओं का खंडन नहीं करना चाहिए। जब हम देखते हैं कि कोई गलत राह पर निकल पड़ा है तो हमें उसे समझाना चाहिए। प्राचीन जब किसी को सलाह देते हैं तो उन्हें कुशलता से बात करनी चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। चुप रहने का समय। जब हमें ऐसे देश के प्रचार काम के बारे में पता हो जहां रोक लगी है, जब हमें मंडली की गुप्त बातें पता हो, आपका जवाब क्या होगा? हमें कब बोलना चाहिए? हमें कब चुप रहना चाहिए? इस लेख में बाइबल से जिन लोगों के बारे में बताया गया है उनसे आपने क्या सीखा? गीत 82, तुम्हारी रोशनी चमके। लेख समाप्त।